ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ನಮಃ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೇ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೇ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸೇ ಪಾಠ ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ವೃತ್ರಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಕಾ ಆವಿರ್ಭಾವ. ಇಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಆಜ 38 ನಂಬರ್ ಶ್ಲೋಕ. ಸಏವ ಹಿ ಪುನಃ ಸರ್ವವಸ್ತುನಿ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸಕಲ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಕಾರಣಭೂತ. ಸರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಜ್ಞ ಆತ್ಮತ್ವಾತ್ ಸರ್ವ ಗುಣಾಭಾಸ ಉಪಲಕ್ಷಿತ ಏಕ ಏವ ಪರ್ಯವಶೇಷಿತ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಸಹ ಬಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಏವ ನಿಸಂದೇಹ ಹಿ ನಿಶ್ಚಯ ಪುನಃ ಫಿರ್ ಸರ್ವ ವಸ್ತುನಿ ಭೌತಿಕ ತಥಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಭಿ ವಸ್ತು ಮೇ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ವಸ್ತು ಸರ್ವೈಶ್ವರ ಸಭಿ ವಸ್ತುವ ಕೆ ನಿಯಂತ ಸಕಲ ಜಗತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೇ ಕಾರಣ ಕಾರಣಕ ಕಾರಣಭೂತ ಕಾರಣ ಬನ್ಕರ್ ಸರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಕಾತ್ಮತ್ವಾತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತು ಕಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತು ಮೇ ಯಹಾ ತಕ್ ಕಿ ಪರಮಾಣು ಮೇ ಭಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೊನೆಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸರ್ವಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿಕೆ ಸಭಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಕಾ ಯಥಾ ಬುದ್ಧಿ ತಥಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಆಭಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ ಉಪಲಕ್ಷಿತ ದೇಖಾ ಗಯಾ ಏಕ ಅಕೇಲಾ ಏವ ನಿಸಂದೇಹ ಪರ್ಯವಶೇಷಿತ ಶೇಷ ಛುಟಾ ಹುವಾ. ಅನುವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ ಸ್ಮೃತಿ ಅಭಯ ಚರಣ ಅರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದಜಿಕೆ ದ್ವಾರಾ ಅನುವಾದ. ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶಸೆ ಇಹ ದೇಖಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯದ್ಯಪಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಪ್ರಕಟ ಹೋತೆ ಹೇ ಕಿಂತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತುಕ್ಕೆ ಮೂಲ ತತ್ವ ವೇ ಹಿ ಹೇ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಕಾ ಕಾರಣ ಹೇ ಕಿಂತು ಇಹ ಶಕ್ತಿ ಉನ್ನಿಸೆ ಉದ್ಭೂತ ಹೇ अतः वे ही समस्त कारणों के कारण है और बुद्धि तथा इंद्रियों के प्रकाशक है। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं, उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे हैं। दोहराइए, विचार विमर्श से यह देखा जा सकता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वे ही है। संपूर्ण भौतिक शक्ति इस संसार का कारण है, किंतु यह शक्ति ही उन्हीं से उद्भूत है। अतः वे ही समस्त कारणों के कारण है और बुद्धि तथा इंद्रियों की प्रकाशक है। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं, उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे हैं। तात्पर्य, सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप शब्द से सूचित होता है कि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के मूल सिद्धांत है। ब्रह्म संहिता की 5:35 में यह कहा गया है कि एकोप्यसौ रचयितुं जगदंड कोटिं यशक्तिरस्ति जगदंड चयाजदन्तः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने अंश के रूप में ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं और समस्त भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। भगवान परमात्मा रूप अपने एक ही अंश अंतर्यामी द्वारा अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे प्रत्यक अर्थात अंतर्यामी है। भगवद्गीता की 13:3 में भगवान कहते कि क्षेत्रज्ञ चापि मांग विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भरतवंशी, तुम जानो कि मैं सभी देहों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ भी हूँ। क्योंकि भगवान परमात्मा है, अतः वे प्रत्येक जीव के यहाँ तक कि परमाणु के भी मूल तत्व है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, वे ही असली सत्य है। बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से मनुष्य प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की उपस्थिति के उनकी शक्ति के प्राकट्य से जान पाता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड 3 गुणों से व्याप्त है और मनुष्य अपने भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार ही उनके अस्तित्व को समझ सकता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूप सर्वेश्वर सकल जगत कारण कारणभूतः सर्व प्रत्यगात्मा त्वात् सर्वगुणाभासो उपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। विचार विमर्श से यह देखा जा सकता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वे ही है। संपूर्ण भौतिक शक्ति इस संसार का कारण है किंतु यह शक्ति उन्हीं से उद्भूत है, अतः वे ही समस्त कारण के कारण है और बुद्धि तथा इंद्रियों के प्रकाशक है। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं। उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत प्रत्येक उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे हैं। तो देवताओं की स्तुति ये चल रहा है। भगवान ने सारे देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु या नारायण की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर दो स्तुति की वर्णन है। पहला स्तुति में कुछ श्रवण करके ही जो कि 21 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक इसको श्रवण करके ही भगवान साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए उनके सम्मुख प्रकट हुए और भगवान प्रकट होने के बाद फिर वो दूसरा स्तुति करते हैं जो कि 31 नंबर श्लोक से लेकर पर 45 नंबर श्लोक तक है। ये 15 श्लोक में पहला 7 श्लोक में स्तुति सुनकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होने के बाद फिर 15 श्लोक में फिर स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं फिर है। तो इसलिए अभी भगवान उनके सामने प्रकट हो चुके हैं। किनके सामने? देवताओं के सामने। समय अभाव क्योंकि ये प्रसंग तो बहुत पहले से आप जानते हो क्योंकि अध्याय का नाम ही वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव। ये वृत्रासुर क्योंकि श्रीधर स्वामी कहते कि भागवत पुराण को पहचानने का एक तरीका है कि जिस पुराण में महाराज चित्रकेतु या वृत्रासुर के उपाख्यान का वर्णन की गई है ये भागवत पुराण में ही इसका वर्णन आता है। चित महाराज चित्रकेतु या वृत्रासुर की महिमा है। वैष्णव कौन है, वैष्णव का परिभाषा क्या है, उनकी महानता क्या है, इस उपाख्यान से पता लगता है कि जहाँ पर जिनकी प्रशंसा स्वयं वैष्णवानंग यथाशंभु करते हैं। जब भी पार्वती माता पार्वती ने अभिशाप दिए हैं किसको? महाराज चित्रकेतु को। महाराज चित्रकेतु बड़े नम्रता से अपने विमान से उतरे और प्रणाम किए। किनको? माता जी को, जिन्होंने को आप अभिशाप दी थी उनको ही प्रणाम करके माता जी कहे कि आपका अभिशाप शिरोधार्य है। यदि वो प्रसंग बहुत बड़ा है शुक्र सारे, लेकिन उस प्रसंग में उदारता और महानता को देखकर इनकी सहनशीलता को देखकर महाराज चित्रकेतु के शंकर जी ने कहे कि देखो पार्वती को कहे कि देखो वैष्णव के महान गुण को देखो जो नारायण परा सर्वे न बिभ्यस्यति कश्चन स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। जो भगवान नारायण की भक्ति करते हैं किसी भी स्थिति में वो विचलित नहीं होते हैं, चाहे उनको स्वर्ग में रखा जाए बा मुक्ति आध्यात्मिक जगत में कि मुक्ति भी प्राप्त हो जाए वा नरक में इनको भेज दिया जाए, किसी भी स्थिति में वो विचलित रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि सर्वत्र किसी भी स्थिति में सदा भगवान नारायण के चिंतन में रहते हैं। नारायण परा सर्वे न विभ्यस्यति कश्चन, है स्वर्ग अपवर्ग नरक है, तीनों को समान दृष्टि में देखते हैं। तो इसलिए पिछले श्लोक में भी कहा गया कि जो महान वैष्णव होते हैं भगवान इनको सही मार्ग का दिग्दर्शन करते हैं, और रसिक ही सही रसिक के रूप में ही देखते हैं। लेकिन जो वैष्णव नहीं है, भगवान की शरणागत नहीं है, और रसिक को क्या ज्ञान करते हैं, सर्प का ज्ञान करते हैं, क्योंकि भगवान ने इनको सही ज्ञान नहीं दिए, इसलिए वो भ्रमित होते हैं। लेकिन भगवान किसको ज्ञान देते हैं, किसको भगवान ने सही ज्ञान देते हैं, जो उनके शरण में आते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में, इसके आगे श्लोक आज जो 38 नंबर श्लोक में आगे देवता लोग ने कह रहे कि स्वयं ही पुनः सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप है, कि प्रकृति में स्व अर्थात भगवान निसंदेह है, समस्त कारण के कारण है, निश्चय ही सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप, भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं में वही कारण रूप है। कौन है, उन्हीं की उपस्थिति के कारण सारे संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि हुई और अभी पालन हुआ, रुका हुआ है और अंत में विनाश भी होता है। भगवान कहते कि श्रीमद् भागवत के चतुर्श्लोक में पहला श्लोक में कहते हैं, दूसरे जो कि दूसरा स्कंद नवम अध्याय में वर्णन आता है, भगवान कहते कि अहम एवास्य एवाग्रे नान्यत यत सत असत पराम पश्चात अहम यत यथाश्च जो वशिष्य तस्मि अहम। भगवान कहते कि जब कुछ भी नहीं था सत असत, तो सबके प्रारंभ में मैं ही था, मेरे से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है। भगवद गीता भी ऐसे भगवान कहते कि अहं सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते, मैं ही सभी कारण के कारण सब कुछ मेरे से उद्भूत हुआ। इसलिए जो कुछ भी हम देखते हैं सभी भगवान का ही, भगवान से ही प्रकट हुआ है। इसलिए कहते कि सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप, इसलिए प्रभुपाद जी कहते भौतिक तथा आध्यात्मिक सब, पहला जो सर्वभूता सर्व वस्तुनि शब्द यहाँ पर उपयोग की गई, प्रभुपाद जी कहते भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु सभी में वही वस्तु स्वरूप है, वही प्रकृति में उन्हीं की उपस्थिति में ही ये सभी का स्थिति है, उन्हीं से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है। जब कुछ भी नहीं था वही थे, और सभी को पालन करने वाले भी वही हैं, और अंत में जो सब कुछ अंत हो जाता है अंत में वही रहते हैं। इसलिए भगवान ही सभी कारण के कारण है। प्रभुपाद जी कहते कि सर्वभूत सर्व वस्तु नहीं वस्तु स्वरूप शब्द से सूचित होता है कि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के मूल सिद्धांत है। इसलिए प्रभुपाद जी प्रभु ब्रह्म संहिता के उस श्लोक कोट करके ही इसको प्रमाणित करते हैं। कौन सा श्लोक है, एक असौ रचयितु जगदंड कोटि यशक्तिरस्ति जगदंड जया जदंत अंडांतरस्थं परमाणु जयांतरस्थं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने अंश के रूप में ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं, और समस्त भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। क्योंकि सृष्टि की प्रारंभ कैसे हुई है ना, भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण से बलराम प्रकट होते हैं, बलराम से फिर इनको ये मूल संकर्षण भी कहते हैं, उनसे ही चतुर्भुज जो आते हैं उसमें द्वितीय संकर्षण आते हैं, द्वितीय संकर्षण से ही तीनों पुरुषावतार आते हैं, कारण दकसाई विष्णु, गर्भ दकसाई विष्णु और क्षीर दकसाई विष्णु। तो कारण दकसाई विष्णु ही सभी कारण के कारण है, जैसे आप देखते हैं बेलून सभी यहाँ पड़ा हुआ, इसी पर कारण सागर में अशेष कोटि ब्रह्मांड ऐसे ही भासते रहते हैं, कारण सागर में, जो कि भगवान का ही रोमकूप से ही एक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ऐसे भासते रहते हैं। तो वही फिर भगवान कारण दकसाई विष्णु वही प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर किस रूप में प्रवेश करके किस रूप में प्रकट होते हैं, गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में हैं। यही प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके ही उसे ब्रह्मांड को धारण करके रखते हैं, रखते हैं, और वो फिर अपने नाभि से किसको उत्पन्न कराते हैं? ब्रह्मा जी को उत्पन्न कराते हैं। ब्रह्मा जी फिर उन्हीं की उन्हीं से ही शक्ति प्राप्त करके ही फिर सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में। इसलिए कारणदक्षाई विष्णु तो एक ही है, लेकिन गर्भदक्षाई विष्णु अनेक प्रतीत होते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में। और इस प्रकार ब्रह्मा जितनी कारणदक्षाई जितनी गर्भदक्षाई विष्णु इतने भी ब्रह्मा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी है। जैसे द्वारका में भी चार मुख वाले ब्रह्मा को अनुभव हुआ था, देखे थे कितनी ब्रह्मा है, जितने भी ब्रह्मा है इतने भी रुद्र हैं, शंकर जी गुणा अवतार से हुए। तो इसी प्रकार ये भगवान कई रूप में प्रकट होते हैं, यदि कारणदक्षाई विष्णु के रूप में, फिर गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में, और जितनी भी सृष्टि फिर ब्रह्मा जी करते व भगवान की व ब्रह्मा जी करते हैं भगवान से शक्ति प्राप्त करके ही, फिर सभी में वो स्वयं प्रवेश करके ही सभी को धारण करते हैं। किस रूप में? क्षीरदकशाई विष्णु, वही परमात्मा है। इसलिए क्षीरदकशाई विष्णु ही परमात्मा की भूमिका निभाते हैं, और ये ही राक्षसों को वध करने के लिए संतों को पालन करना, परित्राणाय साधुनांग विनाशाय च दुष्कृतम, जो भी अवतार आते हैं क्षीरदकशाई विष्णु के माध्यम से ही आते हैं, या स्वयं क्षीरदकशाई भी अवतार कभी कभी अवतरित होकर राक्षसों को संहार करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान भिन्न भिन्न रूप में हैं, जैसे गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके हैं, वही परमात्मा रूप में वहाँ पर ब्रह्मांड के परमात्मा बन के रहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा के अंदर अन्नांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, सर्वत्र भी भगवान की स्थिति है और सर्वत्र वो भी परमात्मा की भूमिका निभाते हैं। हमारे मनुष्य शरीर में भी भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं, अंगुष्ठ प्रमाण के अंगुष्ठ अंगूठे की जितना इतने आकार में भगवान स्थित रहते हैं, वो भी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके हृदय में भी निवास करते हैं। परीक्षित महाराज देखे इनको, माँ के गर्भ में देखे इनको रक्षा करने के लिए किस प्रकार वो हैं घुमा रहे थे अपनी गदा को। तो इसी प्रकार ये सभी सर्वत्र रहते हैं, यद्यपि सर्वत्र ये निवास करते हैं, विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु की मूल तत्व वे ही है, इनसे ही सब कुछ उद्भूत हुआ है। ते तीनों विष्णु में भी कोई अंतर नहीं देखना चाहिए, कारणदक्षाई विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरदकशाई विष्णु, ये वही विष्णु ही भिन्न रूप से अपने कार्य को निभाते हैं। वहाँ पर कारणदक्षाई विष्णु के रूप में सारे ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, कराते हैं, वही फिर क्षीरदकशाई अपने गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में उसके अंदर प्रवेश करके ब्रह्मा को उत्पन्न कराते हैं नाभि से, वही फिर परमात्मा रूप में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए इनको ये शब्द यहाँ पर कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते, इसलिए सर्व सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप है, ये सभी वस्तुओं में फिर भी सार वस्तु के रूप में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। सर्वेश्वर सकल जगत कारण कारणभूत है, सभी के ईश्वर है। प्रभुपाद जी कहते कि हम तो साधारण भौतिक जगत के जो कारण है, भौतिक जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण ब्रह्म संहिता में हमें देखते हैं कि कौन है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव जस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्य चचेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्योंकि इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रकृत में तो ये सभी कारण के कारण ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु ने सॉरी भगवान कहते कि सब भौतिक शक्ति के द्वारा प्राकट्य हुई है, लेकिन ये जो भौतिक शक्ति जो दुर्गा है, जो ये भौतिक जगत का प्राकट्य के कारण है, सृष्टि स्थिति प्रलय की अधिकारिणी देवी है, वो भी उनसे ही प्रकट हुई। किससे? भगवान श्री कृष्ण से। ये भी उनकी शक्ति है, ये भी स्वतंत्र नहीं है। इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा, भगवद् गीता में भगवान कहते कि मया अध्यक्षेण प्रकृति श्वेतस चराचरम, मेरे अध्यक्षता से ही प्रकृति सब कुछ सृष्टि करती है, जो कार्य करती है वो स्वतंत्र नहीं है। मया अध्यक्षण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नानु कौंतेय जगत भी परिवर्तित। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते भगवान वे प्रत्येक भगवद गीता में 13:3 में भगवान कहते कि क्षेत्रज्ञ चापी मांग विद्धि सर्व क्षेत्र से भारत हे भरतवंशी तुम जानो कि मैं सभी देहों की जानने वाला हूँ क्षेत्रज्ञ भी हूँ क्योंकि भगवान परमात्मा है अतः वे प्रत्येक जीव के यहाँ तक कि परमाणु के भीतर भी मूल तत्व है अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ वे ही असली सत्य है। तो इसलिए श्लोक में आज आगे कहा गया कि सर्वेश्वर सकल जगत कारण कारणभूत है इसलिए भगवान ही समस्त जगत के कारण है और उनसे ही सब कुछ उद्भूत हुए हैं जो कि भौतिक जगत का भी हम देख रहे हैं कि बाह्य रूप से हम सोचते कि ये बहिरंग शक्ति के द्वारा परिचालित हो रहा है भौतिक जगत बा भगवान कहते कि वो ही मेरा शक्ति है वो भी भगवान का ही शक्ति है लेकिन ये भगवान की शक्ति भगवान से ही उत्पन्न हुआ है ये स्वतंत्र नहीं है। इसलिए सर्व प्रत्येक आत्मत्वा प्रत्येक वस्तु का परमात्मा होने वा इसलिए परमात्मा रूप में भगवान भी वो जो माया देवी है जो दुर्गा उसके अंदर में परमात्मा रूप में बैठी हुई है कौन भगवान भी बैठे हुए हैं उनके हृदय में ब्रह्मा के हृदय में भी किसी के हृदय में भी स्वयं भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र बैठे हुए हैं सभी के परमात्मा रूप में है प्रत्येक वस्तु में परमात्मा के रूप में उनकी उपस्थिति है। इसलिए ये सर्वगुण आभास प्रकृति के सभी गुणों के प्रभाव का तथा बुद्धि तथा इंद्रियां ये ही प्रकाश करने वाले हैं। बा प्रभुपाद जी कहते कि प्रकृति में भगवान को वो ऐसे ही समझता है वो जिन गुणों के द्वारा स्वयं प्रभावित हो वो व्यक्ति जिस गुण के द्वारा प्रभावित है भगवान को इसी रूप में दर्शन करता है बा इसी रूप में सोचता है। कोई तमोगुणी है तो उसको भगवान कैसे दर्शन होते हैं तमोगुणी व्यक्ति के कैसे भगवान को दर्शन करेगा है? तो काली को कौन पूजा करते हैं तमोगुणी व्यक्ति हैं जो तमोगुणी होते हैं माता काली की पूजा करेंगे तो उनको वही दिखाई पड़ते मांस खाएंगे मदिरा पिएंगे तो सब भगवान के नाम से भगवान पास में अर्पण करी भोग सोचे कि ये सब माँ का प्रसाद है कि वेद में ऐसा ही बताया गया कि जो सारे पुराण हमारा जो दी गई है शास्त्र दी गई है और कोई किसी पुराण में कहा गया कि कोई कहते ना देवी पुराण है उसमें कहे देवी ही भगवान है हैं देवी भगवान कहा गया लिखने वाले एक ही व्यक्ति है कौन व्यासदेव जी ने सारे पुराण को संकलन किए हैं लेकिन फिर ऐसा क्यों किया एक पुराण में लिखते हैं कि देवी भगवान है और शिव पुराण में कहते हैं कौन भगवान है शंकर भगवान है विष्णु पुराण में कहते विष्णु भगवान है सूर्य पुराण में कहते सूर्य भगवान है हैं सब इसी प्रत्येक यदि इसी पढ़ के स्वयं तो इसलिए मतिभ्रांत हुआ व्यासदेव जी के भी है तो ऐसे अलग अलग भगवान पंच उपासना कहते ना हमारे वेद में भी कहा कर्मकांड में कहा गया पांच उपासना पांच भगवान की पांच रूप है हैं एक मायावती मैंने प्रवचन कर रहे थे इधर हम जाते जाते रास्ते में जा रहे थे देखे कि कथा है अभी वो अंतरित हो चुके हैं राम सुख दास जानते बड़ा फेमस कथाकार किताब उसके सुनते तो उन्होंने पूछे भाई भगवान कौन है तो बोले भगवान पांच है हैं वो पांच भगवान बोले हाँ पांच भगवान हैं तो कहते कि विष्णु भगवान है शिव जी भगवान है दुर्गा भगवान है और सूर्य भगवान है और गणेश भगवान है पांच हैं एक ही भगवान पांच रूप बस बोले ये सब भगवान है किसको भी मान सकते तुम्हें पांचों से कोई किसको मान सकते अर्थात गुणा के आधार पर लोग मानते हैं है? जो तमोगुणी है किसको भगवान मानेगा किसको शंकर पार्वत हैं जो रजोगुणी है भी वही और अपने गुणों के आधार पर लोग भिन्न भिन्न भगवान को स्वीकार करते हैं तमोगुणी एक को भगवान मानेगा रजोगुणी और किसको भगवान मानेगा हैं क्योंकि कामस्त हस्ते ही हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य अन्य देवता रजोगुण से ही सारे कामनाएं हमारे पास है काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण असमत्व ऐसो हुए तो इसलिए अपने कामना को पूर्ति करने के लिए लोग अन्य अन्य भगवान में भी शरणागत होते बोलते ये विष्णु देने वाला नहीं है ये विष्णु देता नहीं है बहुत आसम ये नहीं देने वाला और सब छीन लेगा और मुख्य देगा है हमको भी मुख्य नहीं लेना है अभी पहले से इंद्रिय तृप्ति कर लें इसलिए अन्य अन्य लोगों को अपने गुणों के आधार पर, जिस गुणों के द्वारा जो प्रभावित है उसी के आधार पर भगवान चुनता है, ये मेरा भगवान है, हैं? कोई काली भगवान, किसको दुर्गा भगवान, किसको शंकर भगवान, हैं? हिरण्यकशिपु के लिए कौन भगवान है? ब्रह्मा भगवान। ये संसार में यदि कोई व्यक्ति हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए हमको सहायता करता है, हैं? आप तो उसे हम भगवान मान लेते हैं, जब तक हमारे मन में हम सत्वगुण में नहीं है। सत्वगुण में नहीं होने से विशुद्ध सत्व सत्वगुण की स्थिति विषय है, त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन है तदा रजस्तम भावा काम लोभा दयश्चये चीतर अनाविद्ध स्थित सत्व प्रसिद्धति। रजगुण तमगुण के द्वारा प्रभावित होने से है फिर हम उसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा काम लोभ है प्रकट होते हैं, इसलिए अन्य अन्य भगवान हम देखते। प्रभुपाद जी कहते कि एक गीता के तात्पर्य कहते कि प्रकृत में सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में मैं देखा था कलकत्ता में एक व्यक्ति ने द्वितीय महासमर चलता था, सभी लोग हिटलर को गाली देते थे, लेकिन वो व्यक्ति ने अपने एक फोटो टांग के रखा हिटलर का, जड़ी स्नान करके आके क्या करता था, किसका आरती करता था, जय हिटलर हरे हिटलर की आरती करता। पर क्या है, तो पूछे भाई तू हिटलर की क्यों आरती करता, बोला जो दुनिया जो हुआ मेरे को इसमें क्या लेना देना है, मेरा 5,000 का बिजनेस में भी करोड़पति बना इसका कृपा से। किसका कृपा से, कि मेरा सब मनी को ब्लॉक करके, ब्लॉक मनी को है, ब्लॉक बिजनेस करके मैं करोड़ों रुपया कमाया, तो इसलिए यदि सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो मैं करोड़पति कहाँ बनता है, तो इसलिए उसको उसके लिए भगवान कौन है, हिटलर, जय हिटलर हरे। तो लोग इसीलिए सोचते गणेश भगवान बाधा विघ्न नष्ट करता है, हैं? तो कहते ये भगवान है, कौन, गणेश भगवान है, हैं? शिव जी भगवान है, क्योंकि बहुत जल्दी दे देता है, जो मांगो बहुत प्रसन्न होकर तथास्तु कर, बस भोलानाथ है, बस भगवान है। जब तक हमें ये गुणों के द्वारा प्रभावित तो होते हैं तमगुण या रजगुण के द्वारा, फिर हमें अन्य अन्य इस प्रकार भगवान विष्णु को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, यदि वही सभी कारण के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद है सर्व कारण कारण। लेकिन जब तक हम भिन्न भिन्न अन्य अन्य गुणों के द्वारा प्रभावित रहते हैं, हैं, फिर हमें भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानते, हमारे गुणों के आधार पर फिर हमें अपना भगवान चुन लेते, ये हमारे लिए भगवान है, वो हमारे लिए भगवान है। तो इसलिए कि यदि वो उनके बिना सब कुछ मृत हो जाएंगे भगवान की उपस्थिति के बिना, लेकिन अज्ञान की वशवर्ती होकर प्रभुपाद लिखते कि तात्पर्य में कि बुद्धि की विभिन्न, इसलिए मनुष्य अपने भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार ही उनके अस्तित्व को समझ सकता है, अपने भौतिक गुणों की प्रकृति के गुणों के अनुसार ही उनके अस्तित्व को भगवान के भिन्न 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 रूप से भगवान को देखता है। लेकिन असली है कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, उनसे ही सब कुछ उद्भूत होता है, उनसे ही ये गुणा जैसे ही तीनों गुणावतार, उनसे ही बलराम व शंकरसन नारायण सब उनसे ही उद्भूत हुए, किसे, कृष्ण से ही, वही मूल कारण है। इसलिए भगवान प्रकृत में वही है, सारे वैदिक शास्त्र में सर्वत्र उनकी जसगान की जाती है, गीता में भी बार बार भगवान अपने को भगवान के रूप में डिक्लार करते हैं कृष्ण। लेकिन अज्ञान की वशवर्ती होकर गुणों के प्रभाव से आकर व्यक्ति अन्य अन्य को भी, अन्य किसी देवता को भी भगवान मान लेता है, जिससे उनके विशेष रूप में जैसे कर्मकांड में पंच उपासना कहा गया है, कोई दुर्गा को भगवान मानता, कोई शिव को भगवान मानता, कोई गणेश को भगवान मानता, कोई जिस ज़्यादा राग रोग व्याधिग्रस्त है वो किसको मानता है, सूर्य, सूर्य भगवान रोग व्याधि को ठीक करते हैं, सारे रोग व्याधि को ठीक करने वाले हैं, गणेश जी बाधा विघ्न से बचाने वाले हैं, और दुर्गा जी क्या करेंगे, जय माता दी, देखें बहुत गाड़ी के पीछे लिखा हुआ जय माता दी, सब बहुत ही संपदा देने वाली हैं, और शंकर जी तो जो भी चाहो ले लो तथास्तु, चाहे ग्रह इष्ट सब पड़ा के पड़ गया तो भी जाओ शंकर के पास, हैं कुछ भी चाहिए शंकर जी बस भोलानाथ है दे देते, तो कुछ लोग शंकर को, लेकिन भगवान विष्णु के पास बहुत कम लोग आते हैं, हैं? लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति कौन करेगा, है कौन भगवान विष्णु की भक्ति करेगा, हैं जो प्रकृति में भौतिक इच्छा से मुक्त हैं, है भौतिक इच्छा के, लेकिन जदियो भागवत, लेकिन भागवत कहता कि फिर भी तुम इसकी उसके शरण में, जदियो तुम्हारी भौतिक इच्छा है, अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम पराम। तुम्हारे मन में भौतिक इच्छाएं हो या सभी प्रकार की इच्छा हो या किसी भौतिक इच्छा न हो या भगवान की हैं अकाम अर्थात कोई भौतिक इच्छा नहीं है, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करने की भावना है, सर्व काम सभी प्रकार की भौतिक इच्छा क्यों न हो, वा मुख्य काम है मुक्ति प्राप्त करने की, सारूप्य सारूप सामीप्य सालोक्य साष्टी कुछ भी इच्छा है मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो किसी भी स्थिति में आप परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना जाओ, ये कह रहा है भागवत कह रहा है। इसलिए देवता लोग ने कम से कम हम देखा जाए प्रकृति में मानते हैं कि देवता लोग सत्वगुण में है ऐसे कहा जाता है, मनुष्य जोनि विशेष रूप में रजोगुण के द्वारा प्रभावित है और निम्न जोनि तमोगुण के द्वारा प्रभावित है, लेकिन देवता लोग ने सत्वगुणी हुए हैं इसीलिए वो कम से कम किसको किसके पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, इसलिए वो जानते हैं भगवान विष्णु ही सभी कारण को, जदियो फिर भी अपना स्वार्थ में बाधा पड़ने से कभी कभी वो फिर विष्णु के साथ भी लड़ जाते हैं, देवता सकाम भक्त हैं लेकिन फिर भी कम से कम उनको विपद आता तो दूसरे देवता के पास नहीं जाते, किसके पास जाते, विष्णु के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी की लीडिंग से उनके पास जाकर सभी मिलकर फिर खेड़ोदकर सागर किनारे खड़ा होकर किसको स्तुति करते हैं, विष्णु की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु फिर उनकी प्रार्थना सुनकर उनको संकट से उद्धार करते हैं। लेकिन इस मनुष्य जोनि में हम भिन्न भिन्न अन्य अन्य देवताओं के पास भागते हैं, जो भक्त है वो जानते हैं कृष्ण की शरण में जाते हैं, इसलिए भक्ति या भक्त शब्द केवल किसके पास उपयोग की जाती है, केवल वैष्णव को ही भक्त कहा जाता, भगवान विष्णु का आश्रय करते हैं, जो कहते कि वो दुर्गा भक्ति कर रहा, वो शंकर जी का भक्ति कर रहा, ये देव देवता की भक्ति, इसको भक्ति शब्द वहाँ उपयोग नहीं की जाती है, भक्ति का अर्थ है भगवान विष्णु की भक्ति करना, भगवान विष्णु की भक्ति को भक्ति कहते, अन्य भक्ति को भक्ति नहीं कहते, वो तो केवल काम अस्त स्थिर होता ज्ञान है बिना भौतिक इच्छा के लेकर केवल गए, लेकिन हमारे पास भौतिक इच्छा होते हुए भी भगवान क्योंकि कहते कि यदि भक्त के नीचे और एक प्रकार के व्यक्ति हैं उनको सुकृतिवान कहते हैं, जो सुकृतिवान में इनको कहा जाएगा जो भगवान के सब विष्णु के शरण में आते हैं, चतुर्विध भजते माम जना सुकृति न अर्जुन, सुकृतिवान व्यक्ति मेरी शरण में भी आते हैं, इनको क्या कहते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी है, ये देवता लोग ने कौन सा कैटेगोरी में आते, कौन सा कैटेगोरी में क्या देवता लोग आते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी किस कैटेगोरी में आते हैं, विपदग्रस्त होकर है, विपदग्रस्त होता है वृत्रासुर आ गया, हाँ उनका सारे अस्त्र शस्त्र को भी खा गया सब, इससे इतना विशाल दूत बने आवृत कर लिया पूरे आकाश को आवृत, इतनी विशाल था कि ये जितने दिव्यास्त्र छोड़े, देवताओं के पास में दिव्यास्त्र है, मनुष्य उनके साथ सामना नहीं कर सकता, लेकिन वो दिव्यास्त्र को भी सब खा गए, जैसे महाभारत युद्ध में कौन प्रकट हुआ था, घटोत्कच है सब, ये जितने अस्त्र तोड़ के बस कुछ नहीं होता, तो वृत्रासुर इस प्रकार सारे इंद्रा आदि देवताओं के सारे अस्त्र को जब खा गया तो बेचारे भयभीत होकर भगवान के पास गए हैं विपदग्रस्त होकर, लेकिन साधारण देवता लोगों ने कभी विपद आता तो भगवान के पास जाते हैं, जो अच्छे में रहते तभी नहीं स्मरण करते भगवान को, तभी तो आराम से अमृत पी के बस अप्सरा की नृत्य देखना बस आराम से रहना, फिर मस्ती में रहते शराब क्या पीते सोमरस अमृत पी के, रोग व्याधि कुछ होता नहीं है उनके शरीर में, देवताओं के हमारे शरीर में जैसे रोग व्याधि होता है देवताओं के शरीर में से रोग व्याधि नहीं होता है, वो पूरे स्वस्थ रहते हैं, उनका केवल एक ही भय है क्या, राक्षसों के आक्रमण, राक्षस आक्रमण कर लिए तो फिर वो उनके से लड़ाई करना पड़ता है, तो उस समय फिर भगवान को याद आता तो भगवान याद करते हैं, नहीं तो नहीं उनको कुछ नहीं, खाना पमुल कर रहना आराम से, स्वास्थ्य से शरीर बहुत सुस्त सबल है, कोई रोग व्याधि नहीं होता है, लंबे समय जीवित रहते हैं, तो इसलिए विपदग्रस्त होकर वो शरण में जाते हैं, ऐसा ही अर्थार्थी होकर भी कोई कोई शरण जाता है, मनुष्य बहुत कम अर्थार्थी होकर जाते हैं, लेकिन कोई कोई भी जाते हैं, जैसे कौन है ध्रुव महाराज हैं, जैसे शरण हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु हैं, को जानने के लिए भी नहीं, शरण की ऋषियाँ जैसे सु, तो इस प्रकार। लेकिन ज्ञानी सबसे बुद्धिमान माना जाता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी चार प्रकार की जो सुकृति मेरा शरण में आते हैं उनमें से श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी के मन में भौतिक इच्छा नहीं होते हैं, वो केवल मुख्य आकांक्षी है, मुख्य की इच्छा रखता है। लेकिन ऐसे ज्ञानी पुरुष यदि किसी न किसी कारण से भगवान के भक्त बनता है, वो महान बनता है। नहीं? ऐसे कौन ज्ञानी है जो कि भक्त बन गया? चारों कुमार की उदाहरण दी जाती है, सुखदेव को, सुखदेव को संत भक्त ही थे, लेकिन इसको ज्ञानी, क्योंकि प्रारंभ से ये मुख्य काम ही थे, लेकिन भगवान को भक्ति करके ही भक्तों की संगति में आकर फिर ये महान भक्त बने। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी में तात्पर्य की अंत में कहते कि ये और मनुष्य अपने भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार ही उनके अस्तित्व को समझ सकता है। जो जिस प्रकार की स्थिति में परमात्मा तो एक नहीं, भगवान तो एक ही है श्री कृष्ण, और परमात्मा उनका ही विस्तार है। परमात्मा रूप में वो सर्वत्र निवास करते हैं, ब्रह्मांड के अंदर में भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर में का भी परमात्मा रूप में, ब्रह्मांड के परमात्मा रूप में कारण दक्ष विष्णु व गर्भदक्ष विष्णु के रूप में सर्वत्र हैं, अखिल दक्ष विष्णु के वित्त में अन्य रूप में वो अंडांतरस्थ परमाणु चयंत्र सर्वत्र व्याप्त हैं। लेकिन फिर भी उसी भगवान को जब भक्त हैं समझ पाते हैं। भक्तिया मान अभिजानती जावरश्चास्म चश्मी तत्व तत्व से ठीक से भगवान को उन्हें केवल भक्त ही पहचान पाता है, सभी लोग नहीं, अन्य से कोई समझ नहीं पाते। यहाँ से कि देवता लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, देवता लोग कभी कभी उनकी कोई विपदग्रस्त होते तो उनके शरण में जाते हैं, नहीं तो नहीं है। इंद्र भी नहीं पहचान पाता है कभी कभी, गोवर्धन लीला में हम देखिए पहचान नहीं पाई ये भगवान है, ये विपद कंस के द्वारा प्रपीड़ित होकर ये सारे देवता प्रार्थना किए भगवान को आने के लिए हैं, भगवान को जाकर खेलदगे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए से प्रार्थना किए क्षीरसागर किनारे ब्रह्मा के नेतृत्व में, लेकिन फिर वो भगवान आए थे और वो इन पहुंच भूल गए हैं। तो इस प्रकार भगवान को समझने के लिए प्रकृति में हमें विशुद्ध सत्व की स्थिति पर रहना चाहिए, तीनों गुणों की परे हैं। गुणातीत से उच्यते हैं, जो गुणातीत गुणातीत स्तर में तीनों गुण की परे रहता है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। जो सत्व गुण की स्थिति पर भी भगवान को समझना, कृष्ण को समझना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, त्रिवे त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, इस तीन ऊपर उठो। इसी प्रकार क्योंकि गीता में भगवान कहते कि जो तमगुणी है तो भूत राख किसको पूजा करते हैं? तमगुण भूत भूत प्रेतों को पूजा करते हैं, और जो रजोगुणी है जक्ष राक्षसों को पूजा करते हैं, जो सत्वगुणी है वो देवताओं को पूजा करते हैं, ऐसे कहा गया। आज जो तीनों गुण के परे हैं वो कृष्ण को मानते हैं। सत्वगुण स्तर पर व्यक्ति विष्णु को भी कभी कभी आराधना कर सकता है, गुणावतार विष्णु को, लेकिन हाँ सत्वगुण की, क्योंकि तीनों गुण का ये ही अधिष्ठाता है, रजगुण की अधिष्ठाता ब्रह्मा, तमगुण की अधिष्ठाता देवता शंकर जी, सत्वगुण की अधिष्ठाता विष्णु, लेकिन तीनों गुणों के परे त्रिगुणातीत है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण भक्त ही निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, सब अशांत रहते। जब तक हम कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे कभी भी हमको प्रकृत शांति व सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। बस कम से कम भक्ति की शुरुआत होती है कहाँ से? सत्वगुण से। स्थिते सत्वे प्रसिद्धति, नहीं तो रजगुण तमगुण की स्थिति में काम और लोभादयश्चय है, भिन्न भिन्न इच्छाएं प्रकट होती है, लोभ प्रकट होती है, लेकिन कम से कम सत्वगुण की स्थिति में आने से व्यक्ति स्थिर होकर कर्तव्य अकर्तव्य के विवेचना कर सकता है, क्या करना क्या नहीं करना है विवेचना करके फिर सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए ये श्लोक में कहा कि प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व भगवान विष्णु ही है, संपूर्ण भौतिक शक्ति संसार का कारण, समस्त भौतिक शक्ति संसार का कारण है, किंतु यह भौतिक शक्ति भी उन्हीं से उद्भूत है, अतः वे ही समस्त कारण के कारण, भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारण के कारण है। बुद्धि तथा इंद्रियों की वो प्रकाशक है, प्रकृति में उनसे ही हमें सब कुछ, जो भगवान गीता में इसलिए कहते कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहं। भगवान, मैं प्रत्येक हृदय में निवास करता हूँ, उनसे ही स्मृति विस्मृति और ज्ञान सब कुछ प्राप्त होता है। मत स्मृतिर ज्ञानम मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भूल जाने का स्मरण करने का सब सब उनसे ही आता है। सारे वेदों की रचयिता वही है, वेद को पढ़कर जिनको हम समझना चाहते वो भी वही है। वेद सर्वई अहम, सारे वेदों को पढ़कर उन्हीं को समझा जाता है। हम हमें वेद्यांत कृत, मैं ही वेद की रचयिता हूँ, बस संकलन करता हूँ। वेद विदेव चाह, सारे वेदों को पढ़कर उन्हीं को ही जाना जाता है। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य कौन होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यही सभी कारण के कारण है। प्रत्येक वस्तु में ये परमात्मा रूप में भी निवास करते हैं, उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत माना जाता है। इनकी उपस्थिति के बिना हम मृत माने जाएंगे, कोई भी परमात्मा रूप में ये सब सब कुछ सभी को नियंत्रण करते हैं। एकमात्र वही भी सृष्टि के अंत में एकमात्र शेष बचे रहते हैं।